الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي لا يفرق من الذنوب ولا يهدي الغطاء والجود. اس كل موت منتقص سوا وكل مان مذموم ما خلا وهو المنان بفوائد النعام وأوائد المزيد والقسم ما اختلف عليه دهر فيختلف منه الحال فلا كان في مكان فيجوز اليه الانتقال ثم الصلاه والسلام على النبي الامي الواقف بجميع السياسات والحكام والعارف بما في اللوح والقلم سيدنا الممجد وبشيرنا المسدد ونذيرنا المؤيد المصطفى الامجد المحمود الاحمد ابن القاسم محمد.
اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم.
والصلاة والسلام على أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين وسيما على الإمام المنتظر والحجة الثاني الخير والأرض المشتهر ولعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في أحسن كتابه وهو أصدق القائلين: بسم الله الرحمن الرحيم. قوا أنفسكم وأهليكم نارا
فوقدكم. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم.
تربية کے حوالے سے آج جس صفت کی طرف ہم ایک قدم آگے بڑھائیں گے، مجھے کل رات کو پہلی دفعہ سعادت ہوئی مولانا صاحب کی مجلس سننے کی، احساس ہوا تو سیم ہی چل رہا ہے، نہیں خیر ہمارے یہاں تو پوجا ہے، ہم اہل ممبر میں ایک جگہ چھوڑ کے اپنی خوشبو ہوتی ہے، لیکن اگر ہم ایک جگہ سیم ٹاپک چلا بھی دیتے ہیں خود اپنی ماں باپ لوگوں کو جب ہم مینج کر رہے تھے کسی اسپیسیفک ایریا میں اور ہم چار ذاکروں کو ایک ہی موضوع دیتے ہیں وہ چار الگ الگ چیزیں ہی بیان کرتی ہوں، اسی ایک موضوع پر بھی الگ الگ چیزیں بیان ہوتی ہیں. اچھا، ایک چیز ہے جو نارملی میری بڑی خواہش ہے کہ جو مولانا کو پوسٹ کر سکے وہ مولانا کو یہ پیغام پہنچائیں کہ آپ تھوڑا مردوں کی رسپانسبلٹیز کو بھی ہائی لائٹ کریں. ہمارے ہاں ہر چیز کے اندر، یعنی مجھے یاد ہے جب میں 2006 کراچی شفٹ ہوئی شہر مقدس سے یقین سے، پھر بیچ میں خدا نے سال کر دی، ایک سال کے لیے جب پیشر چلی گئی پھر واپس آئی. میں ہمیشہ کہتی ہوں کہ آدم کو ہوا سے نئے جنگل سے نکالا تھا، مجھے میرے آدم میں دفعہ جنگل سے نہ چلو واپس کراچی چلو، جا کے کراچی رہ کر کام کرو. میں نے محسوس کیا تھا ہم نے فری میرج کاؤنسلنگ کے سیشنز دینے لگے اور ہم مارکیٹ گئے اور پبلشر سے ہم نے کتابیں دیکھنا شروع کی، تو 16-17 کتابیں ہیں عورت کو نصیحت پر، ایک کتاب نہیں میری مرد کو نصیحت پر. اچھا پھر ہم آگے بڑھے، کچھ عرصہ پہلے باہر ٹریفک کی وجہ سے اور الگ خصوص یہ جو فیس میں ہم نکلتے ہیں محرم میں، تو بعض بات ایسا ہوتا ہے بات کی ایک توفیق مل جاتی ہے کسی آدمی کی صحبت مل جائے لمبی فلائٹ میں. تو میں ایک مولانا کے ساتھ ایک لمبی سی فلائٹ میں تھی، تو میں نے ان سے کہا کہ یہ جو حدیثیں آدھی پڑھی جاتی ہیں ممبر سے انہوں نے بڑا فساد کیا ہے. تو کہہ گئے کیا مطلب بھابھی؟ میں نے کہا مطلب سمجھ جائیں، میں بھی آپ کو آدھی حدیث سناؤں گی، باقی آدھی آپ مولانا کے منہ سے سنیے گا کہ ہم بچپن سے، میں نے کہا میں بچپن سے سنتی سنتی اب تو میں واقعی بڑھاوے کی سرحد پر کھڑی ہو گئی کہ اگر کوئی عورت شوہر کو ناراض کر کے سوچے کیا ہوتا ہے ملائکہ اس پر
لعنت کر دے،
اور اگر کوئی شوہر عورت کو ناراض کر کے سوچے. اچھا آگے سے مولانا صاحب خاموش ہو بےچارے، اچھا خاصا فلائٹ میں، پہلے تو میں جو کھا جاتے ہوئے تو کھایا ہی نہیں تھا نا، یہ سوچی کہ پتہ نہیں حلال ہے حرام ہے، انہوں نے کہا نہیں نہیں مسلم میرا ٹائم ہے آپ کھا سکتی ہیں. پھر بےچارے مولانا کا بھی کھانا حرام ہو گیا تو میں نے کہا کھانا پینا چھوڑ دیا اور کہہ رہی کیا چاہتی ہیں آپ، میں نے کہا آپ پڑھیں، میں نے کہا مجھے ڈرایا، مجھے سمرا ناٹ مائی سیلف، ہماری جینڈر کو ڈرایا جنم میں جاؤ جنم میں، کہا مجھے لگتا ہے کہ صرف مجھے جنم میں ہی جانا ہے بس اور کام نہیں. اور میں نے کہا اسے کیوں نہیں بتایا کہ اس کے لیے جنت کہیں نہ کہیں ہے، اس کے اوپر بھی کوئی رسپانسبلٹی ہے. لیکن یہ تو بہرحال ایک چھوٹا سا پیغام تھا. نارملی ہمارے یہاں نصیحت کے بعد میں امیاں بھی شادی سے پہلے بیٹیوں کو نصیحت کرتی ہیں، شادی سے پہلے بیٹوں کو نصیحت کرنے کا ٹرینڈ نہیں ہے. آپ بیٹی کو نصیحت کرتی ہیں، اکثر امیوں کی عادت ہوتی ہے، ہمارے پاکستان ہندوستانی کلچر میں تو کوٹ کوٹ کے بھری ہوئی ہے، جاؤ تو ناک نہ کٹوا دینا اور چٹیا کے ساتھ جھاڑوں کا بنوا دینا. نہ میں نے آج تک چٹیا بنی جھاڑوں دیکھی نہ کٹی ہوئی ناک کی اماں دیکھی، لیکن میں نے دیکھا کوئی ماں بیٹی کو شادی سے پہلے بٹھا کر کہ دیکھو بیٹا انسان اور پودے میں ایک سرش مشترک ہوتی ہے، پودے کو آپ کسی جگہ سکھاڑے उसके बाद उसे उससे बेहतर जगह पर लगा दें, उसे टाइम चाहिए उस जमीन के अंदर एडजस्ट होने में। अगर फर्ज करें थोड़ी देर के लिए कंसीडर करने में क्या जाता है, मेरे अब्बा के घर में एसी नहीं था, शोहर के घर में है। अब्बा की गाड़ी बहुत अच्छी नहीं थी, शोहर की है। अब्बा का अपार्टमेंट बहुत लग्जरी नहीं था, शोहर का है। इसके बावजूद एक जगह से दूसरी जगह जाने के दरमियान मुझे नॉट माई सेल्फ, हर लड़की को, हर खातून को स्पेस चाहिए होती है। बेटा तुम अपने ही घर में हो, तुम अपने वालदैन के दरमियान हो, तुम अपने बहन भाइयों के दरमियान हो, तुम अपने मिजाज के खाने पीने के दरमियान हो, तुम अपनी मर्जी के सोने उठने जागने के दरमियान हो। उसका सब कुछ बदल गया है, उसे थोड़ा सा टाइम पीरियड दे देना चाहिए। लेकिन हम एक काम कर सकते हैं, अगर हमारी पिछली नस्ल ने बेटों को बिठा कर नहीं समझाया, मैं और आप बैठकर इंशाल्लाह आने वाले वक्त में समझाएं। और ऐसे एक जुमला है जिस जुमले को हदीयतन लेकर आए थे जिब्राइल अमीन मोहम्मद और आकर ऐसे ये दुआ जो है ना वो मुफाती के शुरू में हमारे दाखिल बाद उस तरफ में है। जिब्राइल अमीन ने कहा या रसूल अल्लाह खुदा से बड़ी मोहब्बत करता है, आपसे कहता सुबह शाम ये पढ़ो। छोटी सी एक तीन लाइनों की दुआ, मुझे ऐसी दुआएं बड़ी अच्छी लगती, छोटी हो। और वो जैसे कल रात की ना लामा मजलिसी को फिर सोने का, अभी तो पिछले हफ्ते का सवाल आए लामा मजलिसी, और ऐसी दुआएं जहां पर छोटी दुआ हो बहुत ज्यादा, जो अल्लाह मैं ना कतरा वला तुरा वन तबी मंजरी लाला वन ना लेके मुस्तावर रुजा वो इन लेकर ममा था वर माहिया रब अऊज़ु बिका अन उज़ल्ला उज़ा, खुदा मैं तुझसे पनाह चाहती हूँ मुझे हर्ट किया जाए या मुझे डी वैल्यू किया जाए। ये आखिर का जुमला मुझे बड़ा प्यारा लगता है, मैं भी बड़े सियालों की तरह मुफाती में हाईलाइट अपनी जो मुफाती है मेरी उसे हाईलाइट करके रखा हुआ है कि वो ऊपर वाले जुमले तो ऐसे अल्लाह मियां के साथ जरा कोऑर्डिनेशन के साथ लिया, अल्लाह मियां तू ये है तू ये है तू ये है, इतनी आउज़ु बिका, मैं तुझसे पनाह मांगती हूँ, ना मैं चाहती हूँ मुझे हर्ट किया जाए, ना मैं चाहती हूँ मुझे जलील किया जाए। तो बहरहाल परवरदिगारी इंशाल्लाह खुदा ने एक बात बताया, अंदर उठाए जिनके रुतबे है सिवा उनको सिवा मुश्किल है। ऐसा नहीं है, हमारी अगर जिम्मेदारी इतनी बड़ी खुदा ने रखी है तो जो अजर सवाब हमारे लिए रखा है, और अगर हम उस अजर सवाब की हिफाजत कर दें, अगर मैं जिंदा रह गई, मुझे खुदा ने आखिरी मजलिस पढ़ने की तौफीक दी, तो मैं बाल्टीकन गोल्स की तरफ इशारा करके जाऊंगी कि हम कहाँ बहा देते हैं, हम संभाल नहीं पाते उस अजर सवाब को। और आज की सिफत है बर्दाश्त, हौसला, सब्र। हम ये कहते हैं कि नई जनरेशन के अंदर ये सिफत
नहीं है।
अच्छा आपने कभी गौर किया क्यों नहीं है? शायद हमारे अंदर 50% थी, यानी मैं अगर हम इसको जनरेशन के साथ हम इसे डिवाइड करते हैं ना, मसलन मिसाल के तौर पर, अब देखिए मुझे ये ही नहीं पता कि आप में कौन शादीशुदा और कौन शादीशुदा नहीं है, कौन साहिब औलाद है कौन साहिब औलाद नहीं है। हत्ता जिस मम्मी का मुझे पता होता है उसमें भी मैं पब्लिक पर रखकर मिसाल नहीं बना सकती। वो पब्लिक का तो ये हाल है, मुझे एक जुमला बड़ा प्यारा याद आता है, खुरासान में मौलाना साहब उतरे और अगले दिन उन्होंने मस्जिद में कहा, कल एक मोमिन मेरे गले पड़ के कहा जब आप शिमर की बात करते थे आपका हाथ मेरी तरफ से लग जाता था, तो ये प्रॉब्लम है। मिसाल के तौर पर मेरी वालदा में सब्र की क्वांटिटी कितनी थी 80%, मेरे अंदर कितनी आई 40%, मैंने अपनी बच्ची को और बच्चे को कितनी दी 10%। क्यों? सब्र और बर्दाश्त पैदा किस तरह से किया जाता है? उसे ना सुनने का हौसला, स्किल्स ऑफ लाइफ। अभी मैंने हमारी रमजान में पढ़ाई इस बच्चियों को, उसके अंदर एक था बच्चे को ना कहने की आदत। खुदा ना खासा देखे हम जिस सोसाइटी में रहते हैं अब्यूज होते हैं बच्चों का, बच्चे को पता होना चाहिए हाउ टू से नो, सॉरी मैं यहाँ मतलब मैं आपकी लैब पर नहीं बैठना चाहती, मैं आपके साथ नहीं बैठना चाहती, मैं आपके साथ नहीं जाना चाहती, मैं आपके साथ सेल्फी लेना नहीं चाहती, मैं पिक्चर शेयर नहीं करना चाहती, ये आदत। अच्छा इसी तरह से जिस तरह से मैं औलाद को सिखाऊं कि ना कहना जिंदगी की एक कामयाबी है, इसी तरह ना सुनने का हौसला। अब हम कहां पर खड़े हैं, हमारा बच्चा सुबह खड़ा होता है, अक्सर ये माओ का सब माओ का रोना है, ये ऐसा ना समझेगा कि आपका जहाँ तीन चार बच्चे रहने मुसीबत है, आपने टेबल लगा दी, सुबह का टाइम नॉर्मली अपना सफर का टाइम होता है घरों में, ये फिर आपने फ्राई अंडा बना दिया, मैंने खाने नहीं रहा है ला, तो माँ फटाफट कह दिया अब परेशान वो नहीं करना, फर्स नहीं क्रिएट करना जल्दी से, अच्छा बस को अल्लाह ने दिया है, वो मामाएं हैं डैड आए हैं, आप दादी सलाम छे जब के डैडा आवाज देंगे हमारे पास भी नहीं, अच्छा अलहमदुल्ला लेकिन खैर किचन वाली मेड नहीं है, लेकिन आवाज दी जल्दी से इसके लिए ऑमलेट बना लो। उसे पता होना चाहिए जो टेबल पर आगे है तुम्हें खाना पड़ेगा। कितनी देर भूखा रह सकते बच्चा? मैं मुझे याद है डॉक्टर मुश्ताक नाथ जी खुदा ने लिखे हम लोग खुम में थे, बड़ी देर में खुम में सर्व किया है कुलवार की फैमिली को, मेरा बच्चा छोटा था बड़ा वाला, तो मैं एकदम उनको लेकर के मैंने कहा ये कुछ खाता पीता नहीं, हर माकर होना था खाता पीता नहीं है, कहा आप इसे भूखा नहीं रखती। अच्छा जब उन्होंने ये जुमला कहा तो मेरा भी वो पहला पहला बच्चा था और बड़ा देखो था ना बड़ी एनर्जेटिक माई होती है, हम शुरू वाले बच्चों ने साथ में आने में जाकर हमारे साथ थोड़े देर के बाद का काम नहीं है, फिर एक बच्चा आ रहा है अलहमदुल्ला और ढेर सारे बच्चे होते जा रहे हैं। उस वक्त मैंने कहा नहीं आपको नहीं पता, मैं तो बैठ के सबासा पढ़ती रहती हूँ और दुआएं पढ़ती हूँ, अल्लाह करे खा रहे कैसे भूखा रखे, कितनी देर भूखा रहेगा, उसी टुकड़ों तक जाएगा। हम भूखा रखे हम तो उसके पीछे पड़ जाते हैं, हमारा बस नहीं चलता, हम तो हाथ जोड़ करके आपकी मेहरबानी आप खा लिए, अगर आप नहीं खाएंगे तो मेरा कैसे दिन गुजरेगा, तुम नहीं खाओ, अरे आप तो अपने लोगों को से दे रही हैं, जाओ स्कूल जाओ, देखो कितनी देर तक नहीं खाती। इस मामले में मैं मिशन शेख अंसारी आलल्लाह मकामों की एक छोटा सा जुमला नकल करती हूँ। शेख अंसारी आप बाबे कबला से हरम नूर मोमिन अली इब्न अबी
तालिब
दाखिल हो तो वहाँ पर लकड़ी की उल्टे हाथ पर पहली जाली जो है वो शेख अंसारी है। शेख अंसारी के बारे में उलमाए नजर में अहले सुन्नत कहा करते थे ज़ोहद उमर, ज़ोहद इससे के गुना उमर, उनका ज़ोहद शेख उमर जैसा ज़ोहद है। खैर शेख अंसारी शेख अंसारी हमें नहीं पता वह मादरा का माँ शेख क्या है, इनकी अहलिया से इनकी बच्ची किसी ऐसे स्कूल टाइप की जगह जाती नजर में शर्म में पता नहीं 70-80-90 साल पुरानी बात है, जहाँ सारी बच्चियाँ लंच खोल कर बैठ के एक जगह लंच किया करती थी, एक स्कूल से आई। अच्छा बच्चा वेल नॉन बाप की औलाद हो या वेल ऑफ नॉन वेल ऑफ बाप की औलाद, उसी इस बात को कल्पना बहुत होता है। आपने कभी देखा किसी मैं बाजू का किसी ऐसी मीटिंग में बैठी होती ना जहाँ एक बैठी है जिसके अब्बा प्रेसिडेंट है, हाउ डियर शो, ओके ओके बेटा हमें पता है आपके अब्बा प्रेसिडेंट है, डोनेशन रोक देंगे हमें डिस्पर्स यानी हमें डिसमिस कर देंगे। बच्चे का बाप साहिब हैसियत हो बच्चे की गर्दन में एक तनाव है, बच्चे का बाप साहिब हैसियत होने के साथ साहिब शराब नहीं हो तो भी आपने देखा। मेरी एक दोस्त है बता रही एक दफा कहती मेरे बेटे को पुलिस वाले ने रोक लिया, उसको कहा पता है मेरे अब्बा कौन है, ओके कर्नल साहब, जब अब्बा का नाम आया तो ऑटोमेटिकली ट्रैफिक पुलिस वाले जाएगा। मैंने कहा हम होते तो हमसे 400-500 रुपए लेकर भेजता क्योंकि हमारे अब्बा को वो जानता नहीं था। अब कहा कि आपके स्कूल से मदरसे से गाय ये आपने जो मुझे रोज देते थे ना रोटी पनीर और सब्जी आपने इलाकियों और इदारियों को देखा बेतहाशा सब्जी खा। हमारी यहाँ इमाम बारगाह में 50 कुर्सियाँ होती है, मतलब मैं फिर उर्सा की मिसाल दी 50 कुर्सियाँ हैं, आप हरम अमीर मोमिनीन में जाएं कितनी कुर्सियाँ, नमाज के लिए कितनी कुर्सियाँ, बहुत लिमिटेड खवातीन, अच्छा उसमें भी इराक की औरतों की, मैं तो उनकी गर्दन को दाद देती हूँ। नीमा शाबान पे उम्मत मशी करते हुए हम जो सिर्फ अरबईन की मशी करते हैं लोकल इराकी वहाँ के जो रेजिडेंशियल्स हैं वो 15 शाबान पे इमाम हुसैन के हरम की तरफ मशी करते हुए जा रहे थे, मेरी सास की उम्र की खातून ने सर पर एक गठरा रखा था, मैं वापस आ रही थी नजर मेरे बेटे का पेपर था फर्स्ट ईयर का, मैं सोच में पड़ गई मैंने कहा अगर ये मेरी गर्दन पर होता अभी तक टूट गई होती अभी तक मैं बैठी होती और मेरी गर्दन में रॉड डल गई होती। लेकिन यहाँ पर सब्जी है पनीर है बहुत सादा किस्म का एक खुराक का इंतजाम है, कहा कि रोज दे देती है, लड़कियां इतना कुछ लाती है कि मुझे एम्बेरसमेंट फील होती और फिर सर कहती शेख की बेटी है। जौजा ने बेटी की शिकायत सुनी रात को शेख आजम अल्लाह मकामों में मेरी जान को बांध रहे हैं मकसद तशैयों की फिकाहत जो दरख्शां सूरज पर आए, अहलिया ने कहा कि आज आपकी सावधान दी आई और कह रही कि मैं कल से ये सब दे के जाऊंगी, शेख ने आगे से कहा सब कुछ रोक दो, मैं थोड़ी देर के लिए सोचा कि मैं होती मैं सिमरान नॉट माई सेल्फ 50 रुपए सुबह बेटी के हाथ में रखती और कहती कहती नहीं चलेगा तुम्हारे तो बाप के खानदान की पुरानी आदत है, मेरा हौसला है मैंने कैसे गुजारा किया है, सुबह उठी सावधानी अब इंतजार करी मीजा को रोल वगैरह जो बनाकर देती है मीजा के दोनों हाथ खा लिए उसने लेके जाना नहीं बेटा आपको कल इतराज करा आपको तो नेमत बहुत डीपैर भी लग रही ना रोटी पनीर और क्या बोले सब्जी ओके ना लेकर जाओ। कितने दिन आपके ख्याल में बच्चा स्कूल ना कुछ लेकर जाए और वहाँ पैसे भी ना दे तो गुजारा होता है स्कूल में जाके तो अच्छे खास वो भूख लग जाती अपना बख्शा के लिए स्विम फैमिली करी और मस्जिद में नहीं करिएगा, पहले ही आपसे मुझे शिकायत है सलवात ना पढ़ने की। और अगर आप मेमोरीज को भी कॉल करने पर आ गए तो मेरी वजह से ही कहा कि अब बच्चियां खोल रही हैं उन्होंने खोला उन्होंने खोला उन्होंने खोला उन्होंने खोला ये मुझे बैठी है खाली हाथ चार पांच छह। अच्छा माँ आगे नहीं बढ़ी, माँ को भी बात जगह सख्ती करनी चाहिए। माँ ने भी पूछेगा देख क्यों कितनी देर, कितनी देर इधर आ हुनरमंद, हुनर आजमाए थुकी आजमा हम जिगर आजमाए, हम देखते हैं तुम कितनी देर भूखी रहती हो और मैं कब तक तुम्हारी भूख को बर्दाश्त कर पाती हूँ। छह सात दिन गुजरे, ये क्या करती हैं आप, कुछ नहीं देकर भेजती, सारी बच्चियां खा रही थी, मैं उनकी शक्ल देख रही होती हूँ और कुछ ही तो खाली रोटी दे दो बेगम ने। फिर शेख से पूछा क्या कर रहा है, शेख भी का सिर्फ रोटी देना सुबह। मैं फिर सोची शेख आपका भी बड़ा सबर था, आपकी बेगम को उससे भी ज्यादा था। हमारी आज की माँ होती ना तो नगे फ्राई करके डाल देती कि अब्बा ने कौन सा थैली खोल कर देखा, रोटी टोल कर देखने के इसके अंदर से शामी कबाब निकल रहे, इसके अंदर से नगे निकल रहे, इसके अंदर से ऑमलेट निकल रहा, कुछ भी निकल रहा। चार या पांच छह दिन गुजरेगा, खाली रोटी दे देती उसको, पहले पनीर का टुकड़ा ही रख दिया, लेकिन तेज हो जाता है रोटी का, खाली रोटी आसानी से निकल जाती, छह दिन खाली पनीर नथिंग एल्स। फिर आफ्टर सम टाइम खाली सब्जी। मैं इस सारे सिनेरियो से सोचूं जब तक नेमत सर्व नहीं होती, सर्व समझते हैं छिन नहीं जाती आपसे, मेरी उर्दू बड़ी खराब है, सही बात खराब है। जब तक नेमत सर्व नहीं होती, आपने कभी कोरोना से पहले सोचा था, कोरोना ने बाद में मतलब सर कर ली ना, बड़ी करीब फिर नहीं जाती बाबा, आपको इन्विटेशन नहीं है और इन्विटेशन है तो पता चले सिर्फ 25 लोगों को बुलाया है और वो खाने की बहार भी नहीं है। हाय मेरे अल्लाह, हम तो शादियों में उदास हो गए कोरोना। वैसे हम उठते बैठते सरते भी तरह से रहते, बहुत इन्विटेशन कार्ड आ रहे थे और बाद में गुम भी हो जाते हैं। बाद शादी जहाँ बहुत मैसेज से उठता उनको कैलेंडर के साथ चिपका देते हैं, याद रहे शादी में जाना है। दो साल नेमतें नहीं थी, बस कोरोना का पहला फेज़ है। लोगों ने अक्सर लोगों ने मेट्स को छुड़वा दिया, जिनके यहाँ मेट्स दूसरे घरों से काम करके आती थी। पहले हफ्ते तो ऐसी सफाइयां हो रही हैं और टाइले भी किसी जा रही और पुलिस को डाला जा रहा है, दूसरे हफ्ते सफाइयां रिड्यूस होना शुरू हुई। मैं आज यहाँ झाड़ू फेरूंगी, परसों तुम्हारा बाथरूम धोऊंगी, बल्कि बाथरूम सब अपना अपना धो, मैं किसी का बाथरूम धोने वाली नहीं हूं। हमने नेमत को सर्व करने का मिजाज नहीं रखा, उसके अंदर बर्दाश्त कैसे आएगी। अब मैं सिर्फ दो टिप्स आपके साथ शेयर करूंगी और मसाइल के बाद में चली जाऊंगी। फिर से सलावत मुसीबतों के अंदर जो बर्दाश्त के मुकाबले में हो चाहिए इंसान को, मुसीबत दो तरह की होती है, या वो फिजिकल प्रॉब्लम है। मैं पिछले दिन आपने डेंटिस्ट ऐसे पूछ रही थी, ये थोड़ा जोर का काम करवाने जाती कहा बात को, यहाँ पर अब आप मर बैठे थे मेरे का मर भी घबराते हैं, जहाँ डांस नहीं करवाने से कहा और कोई जारी ढील होती है वो आती मुँह खोल के गली निकाल दो। जिस्मानी दर्द आपने देखा, बच्चों का हमेशा दो तरह का रिएक्शन होता है, एक बच्चा ऐसा काम नहीं करता वो चुपचाप पड़ा घुट घुट के रो रहा होगा और एक रोता नहीं है रुला देता है, पूरे कंपाउंड को पता चल जाता है इस बच्चे के दांत में कान में खुदा नाश्ता गर्दन में दर्द है। जिस्मानी दर्द के मुकाबले में सिर्फ एक जुमला काफी है। मिजान उल हिकमत की रिवायत ऑथर है आगे मोहम्मद अली शहरी अल्लाह दाम अजल्लाहु अलैहि जिंदा है अल्हम्दुलिल्लाह, फरमाते हैं शदे इमाम से रिवायत को नकल करते हैं कि अगर हमारे चाहने वालों को पता चल जाए कि जिस्मानी दर्द को सहने का क्या अजर व सवाब है, वो आरजू करेंगे उनके जिस्मों को लोहे की कैंचियों से काटा जाए। लेकिन कौन सा सवाब, जब आप क्या करते हैं सब, वरना अगर आपने हर किसी को उठाकर बताते जाए अल्लाह रात में दांत आधा टूट गया और उसके बाद चराग रोशनी ना रही, उसके कोई अजर सवाब नहीं है। आपने अपना अजर खुद ही जाया कर दिया, जरा सा थोड़ी देर चुप रह जाते, अजर तो मिलना ही था, तकलीफ तो बर्दाश्त करनी थी, लेकिन तकलीफ अपना टाइम पीरियड पूरा किए बगैर नहीं जाती। तकलीफ अपना टाइम पीरियड पूरा किए बगैर जाती नहीं है। जिस दिन मैं ये समझ लूं कल रात को जाए मैं आपने ये जुमला पढ़ा होगा ना, कलील उल मकसू, एक लिमिटेड टाइम पीरियड था दुनिया की सारी तकलीफ, इंसान फिर आह और वाह नहीं करता फिर, या फिर तकलीफ दूसरी तकलीफ है, मेंटल टॉर्चर है, कोई और इशू है, खुदा ना हो फाइनेंशियल क्राइसिस है। यहाँ पर एक जुमला है, देखिए हमारे यहाँ अब तो बहुत कम ट्रेंड हो गया, पिछले दिनों मैंने एक बच्ची से ऐसे इंटीरियर डेकोरेशन की बात की तो कहा ये जो लगाए जाते हैं ना फ्रेम जिनके ऊपर आयात लिखी होती है ना, वो इमाम बार का लगता है, ड्राइंग रूम नहीं लगता। मैंने कहा बेटा बास जुमले हमारी आंखों के सामने रहने चाहिए, फजर मोमिन बास चीजों के रिमाइंडर्स रहने चाहिए। ये जुमला मैं अपनी बेटियों से रिक्वेस्ट करूंगी इस हदीस का प्रिंट आउट निकाल कर किसी अलमारी पर, जरूरी नहीं है कि आप दीवार पर फ्रेम लगाए, हमारे पास अलमारियां और बेदहाशा अलमारियां अनारदानों से भरा हुआ हमारी अलमारियां, समझ आ गई है ना, कपड़ों से भरी हुई है। फिर हम कहते हैं हमारे पास नौ कपड़े
नहीं है।
और बेचारा शौहर परेशान हो जाते हैं। मैं कभी कभी सोचती शौहरों को क्यों ये टेंशन ले रही कि कपड़े नहीं है। अभी मैं आने से पहले वतमा कनीस मोमना और नशावाली रजा अब्दुल रजाक के साथ हमारा एक टॉक शो था। मैंने कहा मुझे समझ नहीं आता, मुहर्रम आता है मेरे पास मैसेज आने लग जाते हैं आपके लिए 30% ऑफ, ये ले ले, खाड़ी ले ले, सना समीना ले ले। मैं तो मेरे घर से तो मर्द अलहमदल वजह से पढ़ने जाते हैं, मैंने कभी उनको कपड़ों के लिए परेशान। और हम औरतें कितनी होती है, मुहर्रम के कपड़े टाइटल होता है, मुहर्रम के कपड़े। मुझसे किसी का आप जा रही है कहाँ जा रही है, सब उन्हें ऐसा लगा मैं दादी सलाम जा रही हूँ। कहा मेरी बेटी के कपड़े ले जाएंगी, मैंने कहा शादी है करके मुहर्रम के कपड़े। जिस तरह से कपड़े भरे हुए ना, ऐसे कुछ चीजें हदीस की भरी हुई चाहिए। हदीस आवाज लिख लीजिएगा, ये हदीस आप देखेंगे हदीस में है। मैंने इस हदीस को एनेस्थीसिया इंजेक्शन का नाम दिया है। एनेस्थीसिया का इंजेक्शन समझते हैं, दर्द होता है महसूस
नहीं होता।
जो छोटी ऐसे कलमाते के सहारे से जो छोटी मुसीबत पर सब्र नहीं करता, अल्लाह से बड़ी मुसीबत में। अच्छा हमारे पास बेबी सोरोस भी है, मैं दोनों मिसालें देती हूँ और बात को मुकम्मल कर दूं। जो छोटी मुसीबत पे सब्र नहीं करता, अल्लाह उसे बड़ी मुसीबत में डाल देता है। हमारी पहले मैं बड़ी मुसीबत की एक मिसाल दूं, फिर एक बेबी सोरो की मिसाल दूं और मजलिस को खत्म कर दूं। बड़ी मुसीबत क्या है? अब मेरे पास दो मिसालें हैं, एक इराकी फैमिली की और एक बड़े सगीर पाको हिंद की। मेरे सामने हमारा मोहतरम सुनने वाली मेरी बहने, मेरी बेटियां पाकिस्तान हिंदुस्तान से ताल्लुक रखती हैं। हमारे जो पाकिस्तान हिंदुस्तान की तकसीम हुई उस वाकये के साथ, ये चौधरी नहीं मोहम्मद ख्वाजा मोहम्मद इफ्तखार साहब की किताब की मिसाल है। ये एक उम्मे कुलसूम नामी खातून की दास्तान है। मैं समरी सुनाऊंगी सिर्फ 2.5 मिनट में। हमें सबने हमने सुना, हमने तारीख में पढ़ा, हमें पाकिस्तान के मुताले पढ़ाया गया, नहीं तो अदर किताबों में हमने पढ़ा कि जब ये पाकिस्तान और हिंदुस्तान का पार्टीशन हुआ ना तो बहुत खून बहा, बहुत औरतों की आबरू गई, बहुत सारी जानें बर्बाद हो गई, जाया हो गई, लोगों ने कुओं में खुदकुशी कर ली। इस सारे सिनेरियो के अंदर सिख हमला करते हैं, मर्द मार दिए जाते हैं, खवातीन है 15-20 से करीब जिंदा बच जाती हैं, बच्चियां भी हैं, खवातीन भी हैं। सिखों का जत्था इन्हें डिवाइड करना शुरू करता है, ये तुम्हारी वो उसकी वो उसकी। इसी दौरान सिखों में से एक सिख की नजर एक खातून पे पड़ती है जिसका नाम उम्मे कुलसूम है। और ये सिख इसे कहता है तुम मौलवी अब्दुल कुद्दूस की बेटी हो। ये खातून बिलाखिर इंसान के लिए तकलीफ दिया उस सारे ट्रांस के अंदर। मैं तो कभी सोचती हूँ तो मेरे दिल को कुछ होता है, कैसे गुजारा होगा वो खवातीन ने और मर्दों ने बच्चों ने वो वक्त कहा। हाँ बाकी सिखों से कहता है ये औरत मेरे हिस्से में, इसे कोई हार कोई बदतमीजी नहीं करेगा, कोई अब्यूज नहीं करेगा, कुछ नहीं करेगा, ये खातून मेरे हिस्से में आ गई है। और इस खातून से कहता है तुम उठो यहाँ से साइड पे हो जाओ, बाकी औरतें और लड़कियां तकसीम हो जाए। इस खातून ने सिख से पूछा कि मेरे वाले तो नाम से ही आपको अंदाजा है मौलवी अब्दुल कुद्दूस है और तुम सिख हो, तुम्हारा मेरे वाले साथ क्या ताल्लुक है? कहा एक मरतबा ऐसी कुछ झगड़ा हुआ था पंचायत में, हम गए तो तुम्हारे वाले ने मुझे बड़ी फेवर दी, मैं सिख हूँ मुसलमान नहीं हूँ, बेगैरत भी नहीं हूँ, एहसान परामोश भी नहीं हूँ, मैं आज चाहता हूँ मेरे बाप का एहसान उतार, मैं तुम्हें कुछ नहीं कहूंगा, बिल्कुल किसी किस्म की कोई तकलीफ नो, फिजिकल नो किसी और किस्म की तकलीफ, तुम्हें बहुत आराम से वहां पर पहुंचा दूंगा जहां पाकिस्तान और इंडिया का बॉर्डर है। ये इस खातून को लेकर उम्मे कुलसूम खातून को लेकर पाकिस्तान और हिंदुस्तान के दरमियान जो एक नहर है, बहुत सारा हमारे स्पेशली पंजाब की साइड पर बहुत सारी नहरें हैं जो बॉर्डर के इधर पाकिस्तान आता है इधर इंडिया आता है, इस नहर के करीब पहुंचाया। इस खातून के साथ दो बच्चियां थी, एक 2.5 साल की एक 5 साल की। इस सिख ने इस खातून से कहा ये नहर पार कर जाओ, उधर पाकिस्तान है महाजन कैंप्स है, तुम्हें बड़ी आसानी से कोई ना कोई शेल्टर होम मिल जाएगा और तुम अपने मुसलमान रिश्तेदारों को ढूंढ लेना और सर्वाइव करना। इस खातून ने शुक्रिया अदा किया और कहा भाई साहब आपकी बड़ी मेहरबानी, आपने मेरे वालिद के एहसान का बदला उतारा। और वो पार में चूल्हे बोले दोनों बच्चियों के साथ नहर में चली गई। नहर के मिड में पहुंची तो एहसास हो गया पानी का प्रेशर दो बच्चों के साथ आगे जाने। सिख ने पीछे से आवाज दी एक ले जाओ एक छोड़ जाओ। मैं 30 सेकंड्स के लिए खामोश हो रहा हूँ। हमारे दरमियान माए बैठी है अल्हम्दुलिल्लाह, जो इस नेमत से मेरे में खुदा ने इंशाल्लाह जुमा की बाबर का साथ कर लिखना खुदा इस नेमत से नवाज दिया। दो बच्चों वाली भी बैठी कहा एक ले जाओ एक छोड़ जाओ। इसको 5 साल वाली बच्ची को छाओ में बिठा दिया, 2.5 साल वाली को लेकर पार कर दिया। वो भी इसके पास जाती है तीनों जाने बह जाए मर जाए या एक जान की कुर्बानी देकर बाकी दो जाने बता दी जाए। इसके बाद ये खातून ख्वाजा इफ्तखार साहब अपनी किताब में लिखते हैं इसके बाद खातून पागल हो गए। वो बार बार अपनी सोची को आवाज देती थी दरख्त के नीचे कोई जानवर तो नहीं, मेरा आपसे सवाल है, ये दुख बड़ा है। मैं खुद जाती तौर पर एक डिस्प्लेस्ड फैमिली से मिली हूँ जो यमन से आई थी। हमारे मरादे ही जो मसीह के दरमियान जमा करते हैं, और ऑब्वियसली जो बी आई पी प्रोटोकॉल वाले में मान आता है उनका तो बड़ा एयरपोर्ट पर ही गाड़ियों से हवाई जहाजों में उतार लिया जाता है, और फिर उसके बाद उनको बड़े बड़े होटल में पहुंचा दिया जाता है, 7 स्टार और 4 स्टार और पता नहीं कौन कौन से स्टार। उनमें से मुझे किसी एक ने बताया, मैंने कहा कि आप डोनेशन लेकर आए थे काफ़ी सारी हमारे घर पर डिनर के लिए आए मियाँ बीवी, तो उन्होंने कहा कि अभी हम एक फैमिली से मिलकर आए हैं। उन्होंने मुझे जब उस फैमिली की दास्तान सुनाई, मेरे लिए भी वैसे ही खाना हराम हो गया जैसे मैंने मौलाना साहब का पैकिंग कर दिया। मैंने कहा क्यों, कहा कि मैं एक फैमिली से मिला बंकर में रह रहे हैं, बंकर जाके देखो इराक के रास्ते में मसीह के रास्ते में जगह जगह आपको नजर आते वो। कहा मैं मर्द खानवादा से पूछे कि क्या मसला है, कहा हम यमन में जब दाइश ने हमला किया मेरे साथ 9 बच्चे थे जवान। कहा हम पहुंचे दाइश में एक जगह पर आखिरी चौकी पर फिर से पकड़ लिया। कहा मैं थी, मेरे साथ मेरी 5 बेटियां या 6 बेटियां थी, 4 या 3 बेटे थे। कहा उनमें से किसी एक ने हमारी खवातीन निकाब कर दी थी। कहा किसी एक ने यूं करके हटाना चाहा तो मेरी बीवी ने चीख के आवाज दी, हाथ मत लगाना। कहा उसने कहा बड़ी लड़क हो रही है, अभी तो हम बहुत कुछ करेंगे। कहा मेरी बीवी ने रोना शुरू कर दिया, औरतों के पास क्या है सिवाय गिरिए कि औरतों के पास क्या बचते हैं बाजू पर। कहा उसने जब मेरी बीवी का रोना और गिड़गिड़ाना देखा, कहा बेटे छोड़ जाओ बेटियां ले जाओ। कहा हम बेटे छोड़ के आ गए। मेरा आपसे सवाल है, हम सबकी जिंदगी में कुछ ना कुछ छोटे मोटे दुख होते हैं। जीवानी में 8 मजलिसों का एक सिलसिला होता है जिसका एक दफा मेरा मौजूद है, तस्कियतुल हजीम। इंसान है, जिंदगी है, दुख है, अल्लाह पाक तेरा शुक्र दुख है। जिस तरह से मछली के अंदर कांटे है वैसे ही दुख है, करेले के अंदर कड़वाहट है। अगर आपको करेला बिल्कुल ही टेस्टलेस खा के करना है तो आप करेले की बजाय कद्दू पकाए, सीधी तरह आपको कड़वाहट महसूस भी नहीं होगी। जिंदगी का हुस्न है परेशानियां, जिंदगी में स्किल देती है परेशानियां, जिंदगी में पुश करती हैं परेशानियां। अब हमारे ऊपर टाई है, हम सबर करके छोटी परेशानियों पर रुक जाएं, या फिर हम बड़ी परेशानियों का इंतजार करें। और हमारे पास बेबी सोरोस है, मैं आखिरी मिसाल दूं और मजलिस खत्म कर दूं। बेबी सोरोस हमारे कैसे होते हैं, मैं आपको एक बड़ी मजेदार बात बताती हूँ। मैं कुछ अर्सा पहले ऐसे किसी गेट टूगेदर किसी फंक्शन की बिलावर गई हुई थी, तो बैठ के अपना काम करी थी। ऑब्वियसली क्लासेस होती हैं, वो मेरा तो मोबाइल जहाँ होता है वहाँ मेरे साथ सारे चलते चल रहे थे। हमारी फैमिली में से एक रोती में आई, मैं हुआ क्या है, मैं सोची शायद क्लासों को बच्चा गिर गया ऊपर से, क्योंकि उससे पहले दफा एक बच्ची गिर गई थी ऊपर से। बहुत आपने देखा ना, जब फैमिली पूरी जमा हुई थी किसी शादी के मौके पर, कुछ ना कुछ मैंने देखा मिसाइल जरूर होता है। कभी पानी का कोई मुसीबत, कभी कोई बच्चे की टांग जल गई, कभी किसी का सर फट गया, कभी दोनों एक दूसरे को धीमा मुश्ती में गिरा दिया, लग लगा गई, बेड़ा गर्क हो शुरू हो गई जुबान। ओ खुदाया, बगैर ना स्टॉप इस दर्जी का बेड़ा गर्क हो, इसके हाथों को पालिश पड़े। मैं हुआ क्या है, मेरे तो बच्चे की कमीज बना दी। मैंने कहा इस बात पे रो रही हूँ, देखना जरा, मैं तो अभी बस आज का फंक्शन निपट जाए, मैं जाके इसकी तबीयत साफ करूंगी, इसने किया क्या है। मैंने 6 दफा कहा था ये कमीज है, ये कमीज है, ये कमीज है, उसकी पीको करवा के भेज दिया है, और जो दुपट्टे का पीछा उसकी शर्ट सी दिया। मैंने कहा ये इसमें रोने वाली कौन सी बात है, तुम्हारे कपड़े के साथ हुआ होता तो पता चलता। मेरे तो मैं बहुत सुकून से रहती हूँ, रिलैक्स रहती हूँ, सोची मुकदम में यही है, यही पहन के चले जाओ। और मेरा तो अकीदा ये है कि शादी में औरतों की सिर्फ 2 चीजों पर निगाह होती है, एक वो एनवेलप जो उन्होंने दिया होता है और एक वो खाना जो उन्होंने खाना होता है। बाकी आप उल्टे कपड़े पहन कर चले जाओ, औरतों को पता नहीं चलता, उनको अपनी इतनी पड़ी होती है, वो बार बार अपना दुपट्टा ठीक कर रही होती है, बार बार अपने पांचे ठीक कर रही होती है। मैंने तो तुम्हारे काल में शादी में किसी को इतनी उड़ा उड़ी में इतनी अफरा तफरी नहीं होता। आपने क्या पहने, दुपट्टे की कमीज है, कमीज का दुपट्टा। We have a lot of baby sorrows, छोटे छोटे दुख है, और हमने उनको बड़े प्यार से पाला होता है। पालते कैसे हैं, सिर्फ आखिरी जुमला, और मैंने अपने हाथ की पर्ची भी उठाकर साइड पे रख दी, एक सलावत पढ़ लो। उन बेबी सोरोस को पालने का सबसे आसान तरीका, आपने कभी पेट्स रखे घर में, उनका बड़ा ध्यान रखना पड़ता है, मर जाती है मछलियाँ। मैंने पहले उससे पहले वो बर्ड रखे हुए थे, उसके बाद कबूतर रखे थे। सुबह उठो अपना मुंह धोना, लोग घिस के पहले उनका वो केस साफ करना पड़ता है, और ऐसे हमने दुख पाले होते हैं। पहले फोन करके इनको सुनाएंगे।
تسلی نہیں، انہوں نے آگے سے خاص رسپونس نہیں دیا، ان کو سنائیں گے، انہوں نے بھی نہیں دیا تو ان کو سنائیں گے، آخرکار کہیں سے اسے خوراک مل جائے. اور سامنے والا کہہ گیا اللہ تمہارا بڑا حوصلہ ہے، میں تمہاری جگہ کی تو زہر کھا کے مر گئی. میں کہتی ہوں آگے کھا لو، مرتی کیوں نہیں، ختم کر دو. میرے پاس ایک خاتون آئی، کہ نہیں زہر آپ کو نہیں پتا میری زندگی بڑی دکھی ہے، میں سوچتی ہوں چھلانگ لگا دو کہیں سے. میں نے کہا دیکھو میری بلڈنگ سے لگانے کا فائدہ نہیں، ممکن ہے صرف ٹانگ مانگ ٹوٹے، زیادہ گرنے کی ضرورت، فور فلور چار منزلوں کی بلڈنگ ہے. میں نے کہا ایم سی بی پلازا جاؤ، وہاں چلو، وہاں سے پتا چلے نیچے پتہ چل گئے. میں نے کہا سال آئے سونے پڑ جائے گی، میت نیرائے کیسے جائے گی، پتہ چل دیں گے. آپ نے دیکھا کیسے تو پالتے ہیں ہم، ہم نہیں کہتے نعمتیں پالتے ہوئے ہمارا ایسا مزاج ہے، نعمتوں پہ دوسروں کی نظر ہے. اس کا شوہر، اس کے بچے، اس کی گاڑی، اس کا گھر، اس کا موبائل، اور مصیبتوں میں ہم نے مائکروسکوپ رکھا ہوا ہے. آپ کو نہیں پتا میں یہ کتنی مشکل زندگی ہے، کتنی مشکل، کیا مشکل ہے زندگی، کیا مشکل ہے زندگی میں. ہم یمن کے بارڈر پر رہنے والی فیملیز نہیں ہے، ہم ایران عراق کی جنگ زدہ قوم کی وہ بیٹیاں نہیں ہیں جنہیں نہیں پتا بچے زندہ ہیں یا بچے مر گئے. ہم نے برصغیر پاک و ہند کی تقسیم نہیں دیکھی اپنی آنکھوں سے، ہم نے تو اپنی زندگی میں کوئی دکھ ہی نہیں دیکھا. اور پھر ہم یہ سوچ بھی نہیں رکھتے ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس، خشکی و تری پر جو فساد ہے وہ میرے اپنے ہاتھوں کا بویا ہوا ہے. ہر روز دعا آیت پڑھتے ہیں، ہر روز یہ آیت پڑھتے ہیں، ہر روز اس آیت کے اوپر سے بجلی ہٹا دیتے ہیں کہ ہاں یہ جو خشکی و تری پر فساد نہیں، یہ میرا اپنا بویا ہوا ہے. ہم یہ کہتے نہیں لوگوں کی نظر لگ گئی، اس سے دو قدم آگے بڑھتے ہم کہتے ہیں کس نے کچھ کروا دیا، اس سے ایک قدم آگے بڑھتے تو کہتے ہیں بندش ہے، ہمارے تو پورے خاندان پر بندش تھی. نہیں، جو کچھ ہوتا ہے اس کائنات کے اندر، یہ قرآن کی آیت ہے ظاہر الفساد اور پھر بر بر باغ بے واسطہ سبت اے جنات، خشکی و تری میں جتنا فساد ہے فرزندان آدم کے ہاتھوں کا ہوا ہے. خطبہ متقین میں حمام بن عبادہ یا حمام بن شریح کے خطبے کے اندر مولا کہتے ہیں وہم لانفسہم متہمون، مومن کی ایک صفت تیسری یا چوتھی یہ ہے کہ وہ بار بار اپنے آپ کو بلیم کرتا ہے. بلیم گیم مومن بھی کھیلتا ہے، لیکن اس بلیم گیم میں کوئی تھرڈ پارٹی نہیں، کوئی سیکنڈ پارٹی نہیں، اس کی اپنی ذات ہے. میں نے کیا کیا، شیخ رجب علی حیات کی وہ معروف کتاب کیمیائے سعادت جس کا اردو ترجمہ کیا گیا پھر میں نے خدا کو پا لیا، یا پھر اس نے خدا کو پا لیا، ان دونوں میں سے ایک نام ہے اردو ٹرانسلیشن میں. فارسی کتاب کا نام ہے کیمیائے سعادت، آغا علی شاہنی نے کمپائل کیا. شیخ گزر رہے تھے بازار میں، اونٹوں کا ایک قافلہ گزر رہا تھا، پچھلا اونٹ رکا، اس نے اپنے دونوں پیر اٹھائے اور شیخ کے سینے کی طرف کیے، کچھ فاصلے پر پیر زمین پہ رکھ لیے. عالم مانا نے شیخ رجب علی خیات اللہ مقام نے خدا سے کہا خدا ہے یہ اونٹ کے پاؤں میری طرف بڑھے کیوں، کہا تم نے مکروہ کا خیال دل میں رکھا تھا. کہا خدا ہے میں نے انجام تو نہیں دیا. کہا اونٹ کے پاؤں بھی تمہیں لگے نہیں ہے، سیدھی سیدھی سی کیلکولیشن تھا اس کی. بس پناہ مانگے انسان بڑی مصیبت سے، اور جیسا کہ میں نے دوسری یا تیسری مجلس میں کہا تھا ہمارے سامنے تو ویسے انسیڈنٹ آف عاشورہ ہے، ہمارے پاس صبر کرنے کے لیے اس سے بڑھ کر کیا ہوگا. ہمارے پاس 250 سالہ انسان کی تاریخ ہے، اس کے بعد بھی ہم کہیں کہ ہم صبر نہیں کرتے. کربلا میں ماؤں کے سامنے بیٹوں کا درد تھا، کل ہم نے اونم مدد کی مصیبت کی طرف مجلس میں اشارہ ہوا، ہمارے سامنے تو سیدہ کی شہادت ہے. صحبت علیہ مسائل لو انہا صحبت علی الایام پھر نہ لیا دی. بابا وہ مصیبتیں تھیں جو روشن دنوں پر پڑتی. آپ نے کبھی سوچا سیدہ کی مصیبتیں کیا تھیں؟ شہزادی واز اے سوشل پرسن. میں ڈیڑھ منٹ میں جناب سیدہ کی سوشل ایکٹیویٹیز کی طرف سے اشارہ کروں مصائب کے باب کہ بی بی کے گھر لوگوں کی رفت و آمد تھی، جناب مولا کائنات 6 بہن بھائی تھے، ایک طالب بھی تھے جو کم سنی میں انتقال کر گئے تھے، ورنہ عقیل کی بیوی تھی، تیار جعفر کی زوجہ تھی، ام ہانی تھی، ان کی دوسری ہمشیرہ جمانہ موجود تھی مدینہ کے اندر. امہات المومنین کے ساتھ آنا جانا تھا، امامہ بنت ابی العاص کے ساتھ اتنا آنا جانا تھا کہ مولا کو نامنیٹ کر کے گئی میری شہادت کے بعد اس سے شادی کر لیجیے گا، میرے بچے اس سے مانوس ہے. رفت و آمد تھی انتظارم حاضرین کی عورتوں کی. ڈاکٹر ٹھاکر سیٹھی اپنی کتاب میں ایک جملہ لکھتے ہیں، ہر روز زنانے پر معاشی مارتی تھی اور عادت کرنے کے آخر ایک جملہ بار بار دہرا دیں. آپ نے دیکھو ایرٹوکل آف کرٹیسی ہے سوسائٹی کے اندر، الحمدللہ ہماری سوسائٹی میں بھی ہے. بی بی बच्चियां जो है ना वो बहुत मुरझा गई, इन्होंने आपकी बीमारी का बड़ा असर ले लिया है। बेटे तो फिर मस्जिद में बाप के साथ चले जाते हैं, लड़के ना बाहर निकल जाते हैं। आप ये ज़ैनब और उम्मे कुलथुम को हमारे घर भेजिए, और ये शुरू से ये ट्रेंड अभी भी ऐसा रहा है। खुदा ना किसी घर में बच्चे छोटे हो, बीमार हो, माँ बीमार पड़ जाए तो लोग कहते हैं लाओ एक बच्चा थोड़ी देर के लिए हम ले जाते हैं, बच्चे का ध्यान बढ़ जाएगा। और हर रोज बनु हाशिम की और अंसार महाजन के ये डिमांड जनाब शेदा से करती थी, हर रोज जनाब शेदा दिनाए करती, नहीं 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 शहादत वाला दिन आया, बच्चियों को नहलाया धुलाया। एक जुमला है अरब मकातिल के अंदर, जैनब के बालों में कंघा करना शुरू, और कंघा करते करते थोड़ी देर बाद झुकती थी बेटी का सर चूम ले। शायद माँ के दिल में ख्याल हो आज तो मैं मोहब्बत से रमा ही हूँ, शायद किसी को बिखरे हुए बाल देखकर रहम आए तो कोई बनु हाशिम में से आगे बढ़े और तुम्हारे बाल बनाए। बच्चियां तैयार हो गई, नहला धुला दिया, गेसू संवार दिए, बकौल मक्तल के एक जुमला आ गया डिजाइन लिखा है, बालों में रोगन लगा देना, तेल लगा देना बाल, ताकि जरा जमे रहे सलीके के साथ। कहा जाओ बनु हाशिम की खवातीन के घर चली जाओ। इस घर के अंदर जब ये जनाब ज़ैनब सैयदा ये जुमले जनाब ज़ैनब उम्मे कुलथुम से कह रही है, चार खवातीन मौजूद है, उम्मे अमन है, फिज़ा है, सलमा ज़ौजा इब्ने अबी राफे है, और अस्मा बिन्त उमैस। ये पहली तीनों खवातीन जो हैं इनकी कैटेगरी जो है ना वो उम्मे अमन रसूल खुदा की कनीज थी, विरासत में मिली हुई, फिज़ा जनाब सैयदा की कनीज थी हदीयतन मिली हुई, सलमा ज़ौजा इब्ने अबी राफे भी एक गुलाम की ज़ौजा है, और अस्मा जो है वो जनाब सैयदा की जुठानी है। टक्कर का स्टेटस हो गया ना आपस में, जैसे जैसे हमारा हम चची या ताई होने के ऐसे ऐसे बच्चों को ऑर्डर करते हैं, इसी तरह से अस्मा का एक नाम था, एक मकाम था, एक शख्सियत थी। अस्मा खड़ी हुई और कहा कि पैगंबर आपने बच्चियों को पहले तो भेजा नहीं, आज आपने क्या किया बच्चों को उठा के बनु हाशिम की औरतों के घर भेज दिया। ताली कहती है यहाँ पर डॉक्टर जाकर शेरी कहते हैं जनाब सैयदा ने कोई जवाब नहीं दिया, लेकिन अस्मा ने ये जुमला बाद में किसी के लिए नकल किया कि जनाब सैयदा ने कहा मैंने शेब अभी तालीब में देखा है माँ का दम तोड़ना। 5 साल की थी जनाब सैयदा शेब अभी तालीब। अगर जबीउल्लाह मोहल्लाती रियाहिम शरिया ने जुमला नकल करते हैं, सैयदा है, खदीजा है जो जहरीली जड़ी बूटी ऑलरेडी खा चुकी है और बिल्कुल इस तरह मर पड़ा, असमंदरी अजीत इंसानी है, सैयदा के चेहरे को दोनों हाथों से थाम कर खदीजा ने रोना शुरू कर दिया। पुपी है ना चची है ना नानी है ना दादी है ना माँ है ना बड़ी बहन है, मैं भी जा रही हूँ। सैयदा के साथ कुछ जुमलों का तबादला हुआ, कहा जाओ जाकर बाबा को बुला कर मैं बाबा से कुछ कहना चाहती हूँ। रसूल अल्लाह को लेकर आए जनाब सैयदा, आए देखा जोजे रसूल बिस्तर मर में है, पेशानी का पर मौत के आसार है, और चेहरा वाजे बता रहे जनाब खदीजा चली जाएंगी। कहा अल्लाह के रसूल में कुछ वसीयतें करना चाहती हूँ। रसूल खुदा ने जनाब खदीजा से कहा कहो खदीजा क्या चाहती हो। कहा पहली बात कुरैश की औरतें बददान है, इसके मुंह में जो आता है ये बोल देती है, मेरी फातिमा बहुत छोटी है, उसका दिल बहुत छोटा है, मुझे पता है आप अल्लाह के मेरी बेटी को कुरैश की औरतों से दूर रखिएगा। दूसरा जुमला सुनेंगे खुदा कभी औलाद ही किसी दुख में ना रुलाए, ऐसा ना हो कभी कुरैश की कोई औरत हाथ उठाए और मेरी फातिमा के रुखसार पर तमाशा पड़े। ए अल्लाह के रसूल मेरी फातिमा छुपा के रखिएगा। मेरे से भी जुमला बड़ा शेर से मिला अल्लाह जी की रिहाई में, मैंने कहा जनाब खदीजा आपने कुरैश की औरतों से बचाने का कह दिया, ये क्यों नहीं कहा कुरैश के मर्दों से बचाइएगा। जब अम्मार दाखिल हुए हैं जनाबे सैयदा के हवाल पुरसी करने के लिए, अम्मार बाहर निकले सैयदा के घर से, रास्ते में उस लाइन से मुलाकात हुई है जिसने सैयदा के रुखसार पर तमाशा लगाया था। अम्मार से आवाज दी कि कहां से आ रहे हो भाई अफसान। कहा फातिमा के घर से। कहा तुमने सुना नहीं हमने मना किया है, ना कोई फातिमा के घर जाएगा ना कोई फातिमा के लिए दरवाजा खोलेगा। कहा मुझे मालूम हुआ बिल के पयामत इस तरह बीमारी में आयादत करने के लिए आया। इसलिए जब देखा अब्बासान अम्मार अपनी जगह से हिल गए, इसने रुखसार पर अम्मार के तमाशा लगाया, अम्मार जरा सा लड़खड़ाए, जरा सा गिरने की तरफ पाए हुए और संभल के खड़े हो गए, अम्मार की आंखों में आंसू थे। अम्मा बार रोते हो, एक बार होकर तमाशा लगने पर रोते हो, क्या तुमसे किसने कहा मैं तमाशा लगने पे रोया हूँ? कहा मैं तुमसे बात कर रहा था, तुम खामोश थे, मेरा हाथ उठा तुम्हारे नुकसान पर गया, तुमने रोना शुरू कर दिया। कहा नहीं, तुम्हारे तमाचे की शिद्दत से मुझे एहसास हुआ मैं मर्द होके सड़क पर नहीं आया। सैयदा ने कैसे देखा होगा, सहा होगा, तमाचे की शिद्दत कितनी थी, कान में होश मारा था, छूट कर कमरे में गिरा, छूट कर मैंने बस सलाम कर दी। जनाबे हज्जा रसूल खुदा से बैठी कुरैश के पास, मेरे सैयदा पर हाथ न उठाए। मुझे नहीं मालूम, जब तमाचा पड़ रहा था, सहने माना में बैठे हुए चार बच्चे कैसे देख रहे थे, मां पिट रही है। मैं जिस कदर हो गई, मैंने मेरा आंख में झुमका, अगर पसंद तो पानी का नहीं, मजा नहीं किबरिया का। कहा बच्चे एक दूसरे से लिपट गए, हसन ने दोनों बहनों को साथ बजाया, हुसैन को अपने करीब बिठाया, मुसलमान घर में दाखिल हुए। एक नबील अजीज कहता है, अपने शहर नजबला में ऊंट के नाक में नकेल देखी है, अली के गले में रस्सी का सिरा था। मुसलमान अमीर मोमिन को मस्जिद से घसीट कर, घर से लेकर मस्जिद तक घसीट कर लेकर जाना चाहते हैं। सैयद अगर वो दीवार के दरमियान है, आने वाला शकी कहता है, पहली लात पे मुझे यकीन नहीं था दरवाजे पर सैयदा है, दूसरी मर्तबा मुझे यकीन हुआ वो रिश्तेदार फातिमा है, मैंने दोनों हाथों से दरवाजे से दबाया, फातिमा के अब फातिमा के रोने में एक औरत का रोना नहीं था, एक ऊंटनी का रोना है जो दर्द से गुजर रही है। सैयदा ने देखा मुसलमान अली को लेकर मस्जिद में जा रहे हैं, सैयदा की आंखें खुली, काफी साइना वाला सर देखा, सामने मुसलमान घेर कर लेकर जा रहे हैं, हाथ से वाला सर का दामन पकड़ लिया, एक नहीं ने खुल उसको इशारा किया, पहला तासी आना लगा, सैयदा का हाथ सुर्ख हुआ, दूसरा तासी आना लगा, सैयदा का हाथ पीला हुआ, तीसरे ताजी आने पर सैयदा का हाथ छुट गया और अमर हसन का दामन फातिमा के हाथ से निकल गया। जब दम निकल रहे थे माला, तो रसूल अल्लाह से कहा था, या आपकी अमानत, कब्र पैगंबर से आवाज आई, अली ने मत कहना मेरे बेटी को मैं इस तरह।
Thank you.